प्रस्तुत है अमित कुमार के शब्दों में सागर। 6 वर्ष 4 मास और 6 दिवस के प्रवास के पश्चात नक्षत्र द्वारा निर्दिष्ट शुभ लग्न में संध्या वेला आचार्य प्रवर्धन के पुत्र आचार्य रुद्रधीर ने पूर्व द्वार से पुनः सागर नगरी में प्रवेश किया। रुद्रधीर यात्रा के साधारण वस्त्र पहने थे और यात्रा के से श्रांत परंतु बलिष्ठ अश्व पर आरूढ़ थे। उनके पीछे अश्वारोही दास श्रम्भक था। सागर के बाह्य रूप में आचार्य ने विशेष परिवर्तन न देखा। हट और पुण्य जनाकीर्ण और व्यस्त थे। उनके यातायात के कारण मार्ग से उठने वाली धूली से बचने के लिए व्यापारियों ने अपने हाथों के समूह जल छिड़क कर मार्ग को भिगो दिया था। सब और व्यस्तता थी। आमोद के संकेत का भी अभाव न था। पुष्पों के विक्रेता मनस्फुटित पुष्पों की मालाएं और डलिया लिए पुकार लगा कर रसिकों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। गंधियों की हाटों से उड़कर अनेक प्रकार के सौरभ कोलाहलपूर्वक वातावरण में रच रहे थे। नागरिक सुंदर वस्त्र और पुष्प धारण किए सुगंध रचनाएं इटलाते चल रहे थे। समृद्ध जन जीविकाओं रथों और अश्वों पर संध्या विनोद के लिए पुष्पकर्णी उद्यान अथवा नर्तकियों के स्थानों की ओर जा रहे थे। भीड़ में मुंडी सन्यासी भी दिखाई दे जाते थे। अपने कार्य और विनोद में अभ्यस्त जन ने नवागंतुक अश्वारोही की ओर ध्यान न दिया। उस अत्यंत सामान्य स्थिति में पहचाने जाने की इच्छा रुद्रधीर को भी न थी। राजपथ से आचार्य प्रसाद के लिए मार्ग ग्रहण करते समय सहसा तुर्य का शब्द सुनकर रुद्रधीर ने घूमकर पीछे की ओर देखा। जनाकीर्ण मार्ग पर सैनिक वेशधारी एक अश्वारोही रजत का छोटा तुरी बजाता चला आ रहा था। तुरी का शब्द सुनकर पदाति मार्ग छोड़कर हटते जा रहे थे। अश्वारोही के पीछे एक जैसे रंगीन वस्त्र धारण किए 16 वाहकों के कंधे पर एक प्रकांड शिविका थी। शिविका पर छत्र और जमुर के नीचे रत्न जटित आभूषणों से जगमगाती एक वेश्या बैठी जान पड़ी। सिंगार और प्रसादन की अधिकता के कारण उसे पहचानने में रुद्रधीर को दुविधा हुई। शिविका के दक्षिण पार्श्व में सामंत कर्तवीर का युवा पुत्र सगृद और वाम और यवन सामंत पंडित इकृद का युवा पुत्र महेंद्र था। आचार्य के मन में दुविधा थी। निश्चय ही यह देवी मल्लिका नहीं प्रौढ़ावस्था को प्राप्त नारी को पुनः यौवन दे सकना आयुर्वेद के भी सामर्थ्य में नहीं। सागर नगरी को किस कलावती नवीन नर्तकी ने सौभाग्यवान किया है जिसका समारोह मल्लिका से भी अधिक है। जयघोष का कोलाहल कान में पड़ते ही रुद्रधीन को पुनः घूम कर पीछे देखा। हटो पानियों और मार्ग पर खड़े लोग नमस्कार की मुद्रा में पुकार रहे थे, महादेवी शेरी की जय, महासेनापति पृथ्वीसेन की जय। रुद्रधीर ने विस्मय से फैल गए अपने नेत्रों पर बल देकर पहचाना। सिरो विस्तृष्णा से दांत पीस कर उसने मुख फेर लिया। सागर में बीते जीवन के 35 वर्षों में ऐसा कांड उसने न कभी देखा था न सुना ही था। राज्यसत्ता का चिन्ह छत्र और चमर धारण करने का अधिकार मद्र के कुलगण राज्य में केवल गणपति को अथवा गणराज द्वारा सम्मानित कला की अधिष्ठात्री जनपद कल्याणी नगर श्री नर्तकी को और सोचने लगा मत की मर्यादा को उल्लंघन की यह धृष्टता कैसे, क्या दासपुत्र गणपति के आसन पर आ बैठा है। आचार्य के स्वदेश लौटने के समाचार से मित्रवर्ग और परिजन नर नारियों से प्रसाद पूर्ण हो गया। उत्साह के समारोह में भी आचार्य रुद्रधीर गंभीर चिंता से मुक्ति न पा सके। अपने प्रवास काल में मद्र और सागर में हुए परिवर्तनों का वृत्तांत और ब्यौरा का चिंता सुनते रहे। आचार्य ने शीघ्र ही परिस्थितियां हृदयंगम कर ली। सर्वसाधारण जन समाज ने मद्र और सागर में कोई परिवर्तन अनुभव न किया। सागर का आकाश शत्रु के आक्रमण की आशंका के मेघों से शून्य था। नगर परिषद में निरंतर चलने वाले कुलों की स्पर्धा का झंझावात भी शांत था। व्यापार और समृद्धि बढ़ते दिखाई दे रहे थे। विनोद और भोग के साधन बढ़ गए थे। सर्वसाधारण जन निश्चित व्यस्त और सुखी था। सागर के समाज के उपवन में साधारण पेड़ पौधे लता कुंज और वनस्पति लहरा रहे थे, परंतु अभिजात वंश और कुलरूपी महावृक्ष स्तब्ध और संयंत्र खड़े थे। महासेनापति गणपति मित्रोदस पक्षाघात रोग से सैया पर पड़े थे। उदरशूल से पीड़ित पुत्र के वियोग से निरुत्साह और श्रेष्ठी प्रेस्त के छल से परास्त और हत प्रभित आचार्य प्रवर्धन के परलोक प्राप्त कर लेने पर 2 वर्ष तक नगर परिषद की सभा आमंत्रित ही न हुई थी। युद्ध के संक्रमण काल में महासेनापति गणपति द्वारा ग्रहण किए गए सर्वाधिकार अभी उन्हीं के अधिकार में थे। रोगग्रस्त गणपति सैया पर थे और उनकी राजकीय मुद्रा उनके परम विश्वास और जनता के परम आदर भाजन महाश्रेष्ठ प्रेष्ठ के हाथ में थी। केंद्रस के आक्रमण के समय गण के आगड़ा हर सामंतों की अनुपार्जित संपत्ति की आज गण कोष में सम्मिलित कर लेने पर भी जब मद्र में पर्याप्त सैन्य दल के लिए धन संचय न हो सका, प्रेस्त की मंत्रणा से गणपति ने 100, 200 और 500 सैनिकों का भरण पोषण करने के लिए गण को धन की सहायता देने वाले धनिकों को भी गण परिषद में सदस्यता का आसन अर्पित कर उत्साहित और सम्मानित किया। गण परिषद के सदस्यों की संख्या दुनी हो गई। इस प्रकार के 10 सदस्य महाश्रेष्ठ प्रेस्त का आश्रय पाकर गण परिषद में उपस्थित थे। पुत्र के वियोग से निरुत्साह और श्रेष्ठ प्रेस्त के छल से प्रास्त और बहुत प्रभावित आचार्य प्रवर्धन के परलोक प्राप्त कर लेने पर 2 वर्ष तक गण परिषद की सभा आमंत्रित ही न हुई थी। सागल पर आए कठिन समय में श्रेष्ठ प्रेस्त की कूटनीति से गण परिषद की सदस्यता का आधार वंशाधिकार से नहीं द्रव्य के आधार पर हो गया। द्रव्य घटता बढ़ता है, वह मनुष्य के प्रयत्न का फल है। कुल देवाधीन है, उस पर मनुष्य का वश नहीं। द्रव्य के आधार पर साधारण जन द्वारा भी कुल सत्ता के अधिकार की स्पर्धा कर सकने से कुल का संबंध मनुष्य के अधिकार की वस्तु बन गया और वह क्षीण होने लगा। इस निर्धार से विरक्त होकर सामंतगण और अभिजात वंश गण परिषद की उपेक्षा करने लगे। गण परिषद और गण के शासन के प्रति अभिजात वंशों और सामंत कुलों की उपेक्षा देखकर रोग से हतोत्साह और वार्धक्य से शिथिल मति गणपति महासेनापति मिथोद्रस ने गण संवाहक के पद पर महाश्रेष्ठी प्रेस्त को नियत कर दिया। परिस्थितियों की अनुकूलता और अपनी नीति के बल से प्रेस्त परिषद के संवाहक के आसन पर जा पहुंचा। वह आसन पाकर भी उसका व्यवहार अत्यंत विनीत था। एक समय कुल की हीनता के कारण महाश्रेष्ठ प्रेस्त के लिए गण परिषद में आसन पाना संभव न था। विप्र कुल के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए महाश्रेष्ठी ने अपने अनेक महायज्ञों का बलि सहित अनुष्ठान करके ब्राह्मणों का सत्कार किया। वह तथागत की सर्वभूत दया के प्रति भी श्रद्धालु था। अभिधर्म को भी वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप प्रतिष्ठा देने के लिए उसने युद्ध काल में गण द्वारा अधिकृत चैत्यों और बिहारों की आय उन्हें लौटा दी। वर्ण आश्रम और तथागत के अभिधर्म का द्वंद सागर में पुनः प्रचंड हो गया। सेनापति पृथ्वीसेन का विवाह अत्यंत समारोह से गणपति की पोत्री सिडो से हुआ था। उस समारोह में संपूर्ण सागर नगरी उत्साह से जगमगा कर विनोद से किलकर उठी थी। उत्तराधिकारी विहीन गणपति ने अपनी पोत्री के हाथ में संपूर्ण संपत्ति रखकर वंश का सम्मान और अधिकार की मनोनीत जमाता को सौंप दिया था। पृथ्वीसेन हीन कुल में जन्म पाने के कलंक से मुक्त होकर मद्र का सबसे अधिक समृद्ध और सम्मानित सामंत बन गया, परंतु आत्महनन के परिणाम स्वरूप वितृष्ण और शैथिल्य का भाव उसके मन और मस्तिष्क पर छाया रहता। वह स्वयं अपने और समाज दोनों के प्रति विरक्ति अनुभव कर निस्तेज रहने लगा। पृथ्वीसेन का शिथिल भाव देखकर महाश्रेष्ठ ने स्नेह से प्रताड़ना की, पुत्र संसार में तुम्हारे लिए अपर्याप्त क्या, अप्राप्य क्या, जो प्राप्य है उसका भोग करो, जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य प्राप्त करो। क्या एक स्त्री सिरों का दिव्या ही तुम्हारे जीवन की परिधि है? अभी तुमने जीवन सोपान की आरंभिक सीढ़ी पर पांव रखा है। जीवन दीर्घ और विस्तृत है पुत्र, किसी एक स्त्री के अभाव में जीवन को व्यर्थ समझना केवल कायरता है। यदि दिव्या जीवित होती तो वह भी तुम्हारे लिए प्राप्त होती। जो मृत और बीत गए की चिंता में आक्रमण्य होता है, नीतिवान उसे मूर्ख कहते हैं। शिरोमद्र के परम भट्टाड़ा गणपति की पौत्री गण परिषद के संवाहक की पुत्र वधु और महापराक्रमी सेनापति की अर्धाग्नि थी। वगड़ से माथा उठाकर चलती समाज में सबसे सम्मानित आसन की वह अधिकारिणी थी और उससे अधिक की स्पर्धा उसके मन में थी। वह सबसे अधिक काम्य भोगों को भोगती और सागल के सबसे अधिक सुंदर युवा पुरुषों से आदर की आशा करती। उसके रागरंजित होठ केवल मदिरा से धुलते हैं, वह वैचित्र उसे भिन्न भिन्न होठों में भी मिलता। स्पर्श सुख उसके लिए युवा पुरुषों की बलिष्ठ भुजाओं और लोमहर्षक कठोर वक्षस्थल के अतिरिक्त न था। पृथुसेन ने सिरों के लिए आत्महनन किया था। सिरों के ही हट के कारण उसने दिव्या को खोया। दिव्या को खोकर उसने अपने जीवन के चिर पोषित स्वप्नों को खो दिया। सिरों की उच्छृंखलता उसे सहन न हुई। पति के अधिकार से उसने पत्नी की प्रताड़ना की। सिरों ने रोकर पृथुसेन के अन्याय का विरोध किया। उस पर भी पति का दमन असह जान पड़ने पर उसने क्रुद्ध सौंपनी की भांति फन उठाकर फुफकार दिया। मैं तुम्हारी कृतदासी नहीं हूँ, तुम मेरे आश्रित हो। मैं तुम्हारी आश्रिता नहीं, मैं तुम्हारे पिंजरे में बदस्तारिका नहीं हूँ। केवल तुम्हारी अंग सेवा के लिए दासी नहीं हूँ। तुम वेश्याओं से विलास नहीं करते। कितनी दासियाँ तुम्हारी पर्यंक सेवा के लिए हैं। उपभोग के भिन्न भिन्न सुखों और रसों के लिए तुम्हें कितनी नाड़ियाँ चाहिए। मेरे लिए वे संसार में केवल तुम ही एक पुरुष नहीं हो, तुम जैसे अनेक और तुमसे श्रेष्ठ अनेक। मैं द्विज कुल की पत्नी दासी नहीं हूँ। मेरी धमनियों में यवन विजेता का रक्त है। मैं तुम्हारे वंश रथ की धुरी खींचने के लिए बछड़े उत्पन्न करने वाली गाय नहीं। यदि तुम मेरा अपमान करोगे, मेरे लिए विस्तृत जन समाज है। तुम्हें महासेनापति बना सकती हूँ तो तुम दूसरे को भी महासेनापति बना सकती हूँ। हाय पितामह के नेत्र मुंद लेने पर मेरे भाग क्या क्या होगा, वह फूट फूट कर रोने लगी। पृथुसेन के नेत्र अंगाड़े की भांति दाहक उठे। उसकी उंगलियां सिरों का गला पकड़कर उसे मरोड़ने के लिए तिलमिला उठी। उसे दो खंड कर देने के लिए उसका हाथ खड़क की मुठ की ओर बढ़ जाना चाहता था, परंतु कल्पना में दूरदर्शिता के प्रतिमूर्ति सांप पिता सम्मुख खड़े हुए। और फिर वेवेद्र गणपति भी अनेक यवन सामंतों से घिरे हुए। पृथुसेन असमर्थ आवेग का श्वास शून्य में छोड़ कर शिथिल हो गया। सिरों उंगलियों में मर्दन कर समाप्त कर देने योग्य निर्बल न थी। उसकी गिरबा की रक्षा के लिए कवच स्वरूप गणपति के आसन की विराट शक्ति थी। उसके सहायक अनेक यवन सामंत स्वयं दासत्व अंगीकार कर वह अबाक न थी। वह अपनी शक्ति से सतर्क थी और उस शक्ति को पुकारने के लिए तत्पर थी। सिरों की गिरबा मसल डालने का मूल्य पृथ्वीसेन की अपनी स्थिति और जीवन होता। अवसर देखकर द्विज कुलों के सहस्त्रों खड़े पृथ्वीसेन और उसके कुल के रक्त की तृष्णा में लपलपाती जिहुआ के रूप में निकल आते। अनेक दिन शून्य में दृष्टि स्थिर किया एकांत में गिरवा झुकाए पृथ्वीसेन गुड़ विचार में मग्न रहा। उसने निश्चय किया उसके दूरदर्शी महामति पिता का ही विचार उचित है। संसार में केवल एक सत्य है, शक्ति। केवल एक वस्तु काम में है, शक्ति सामर्थ्य। से संसार उनके अंतर्गत है। यदि आज वह मौर्य कुल के छत्रपति की भांति निरंकुश होता तो सिरों के पापाचार के लिए उसे चिता पर जीवित ही भस्म कर सकता था। नहीं, अस्थूर्ण से बंधी सिरों अबाक देखती रहती और उसके स्थान पर दूसरी नारी को, दिव्या को, अनेक स्त्रियों को पट महादेवी के आसन पर अपने अंग में स्थान देता। सिरों उसकी चरण सेवा करती। सिरों के प्रति उसका मन घृणा से भर उठा। पृथ्वीसेन प्रकट वैभव और शक्ति के बल में अपनी वास्तविक व्यवस्था जानकर खिन्न उठा। उसकी संपूर्ण शक्ति और महिमा की प्रतीक वही सिरों थी। सिरों के पति के रूप में वह मद्र के गणपति का उत्तराधिकारी महासामंत था, अन्यथा अभिजात कुल का सम्मान पाने की स्पर्धा के लिए निराद्रित दासपुत्र। पृथ्वीसेन ने यत्न किया कि अपने मस्तिष्क को मधुर और रिक्त मदिराओं के फेन से और अपने कानों को वेश्याओं और नर्तकियों के नुपुर की झंकार से बुनकर उसके अपने विचारों से उठती विरोध की पुकार उसे सुनाई ना देती, परंतु शांति ना मिली। वह आत्मविस्मृत ना हो सका। उसका विचार कहता यह केवल आत्महनन है, कायर का आत्महनन। उसकी अंतरात्मा चित्कार कर उठती, शक्ति, निरंकुश शक्ति, पिता की बुद्धि से, मेरी भुजा के पराक्रम से। सिरों को उसके अपने पत्नी के रूप में देना चाहा, परंतु गणपति ने के जमाता होने के गर्व को संभाले रहा। उत्तेजक मद के चषक और लोलकामिनी के अंगों का मर्दन उसके लिए अशक्ति और संतोष का विषय नहीं रही। वह केवल शांति निवारण और शारीरिक स्फूर्ति का उपाय और सामाजिक कर्तव्य थे। अपने अंतस्थल में वह इन वस्तुओं से उसी प्रकार विरक्त था जैसे निर्वाणकारी भिक्षु अपने शरीर से विरक्त। रहता है। जैसे भिक्षु अपने शरीर की चिंता शरीर को केवल अपनी सिद्धि का साधन मन कर ही करता है, वैसे ही यह सब भोग पृथ्वीसेन की दृष्टि में थे। भोगों के प्रति मन में वह योगी के समान अनासक्त हो गया। उसकी साधना थी शक्ति, सुख वह केवल शक्ति के उन्माद की कल्पना में पाता। शक्ति संग्रह ही उसका लक्ष्य, स्वप्न मंत्र का निरंकुश शासन था। युद्ध विजय की सेवा के उपलक्ष्य में उसने गणराज्य से 10 ग्राम का अग्रहार पाया। उसे मद्र की रक्षा के लिए 5 और सैनिक रखने का अधिकार था। शेष 1,000 सैनिक उसने महाश्रेष्ठी द्वारा पोषित गण परिषद के सदस्यों के अधिकार से रख लिए थे। 150 चतुर सैनिकों का स्वामित्व उसके लिए सब भोगों से अधिक संतोषजनक था। सागर के जन समाज को शक्ति और सामर्थ्य का आदर करने का अभ्यास था। शक्ति के सम्मुख मस्तक झुकाने से उसने अपने सिर पर संरक्षक की छत्र छाया का आश्वासन अनुभव होता था। महाराज मिलिंद के अभाव में जन समाज गणपति महासेनापति मिथोद्रस को मस्तक झुकाने लगा। गणपति पक्षाधात रोग से ग्रस्त हो गए। उनका दर्शन कर आदर से उनके सम्मुख सिर झुकाने के अवसर से जन वंचित हो गया। जन समाज पुण्यात्मा जनपालक देवताओं की इच्छा से समृद्ध नगर परिषद के संवाहक महाश्रेष्ठी के पुत्र गणपरिषद के जमाता दर्व के दस्यु के मर्दक पराक्रमी विजयी सेनापति पृथ्वीसेन को ही महासेनापति संबोधन कर शासन और शक्ति का प्रतिनिधि मानकर उसका आदर करने लगा, उसका जयकार पुकारने लगा। उस आदर के प्रति सिरो अपना अधिकार पृथ्वीसेन की अपेक्षा भी अधिक समझती थी। सिरो गर्व स्पर्धा और सम्मान की लिप्सा के कारण अपनी उच्च श्रृंखलता से अपनी उत्तरोत्तर बढ़ती महिमा का प्रदर्शन कर उनको अपने आदर के लिए अभ्यस्त करती रहती। साधारण जन अपने रंग संरक्षक के वैभव का चमत्कार और महिमा देखकर संतोष से पुलकित होकर अधिक जयघोष करते। अभिजात वर्ग उस वैभव प्रदर्शन में अपनी हेठी अनुभव कर क्षुब्ध होता, परंतु परिस्थिति से विवश होकर मौन रह जाते। पृथ्वीसेन की दृष्टि में सिरु मन के संतोष के प्रयोजन से केवल है सब मात्र थी, परंतु गणपति की पुत्री के नाते जनकी श्रद्धा अपनाए रखने के लिए अत्यंत उपयोगी। वह अपनी दृष्टता से जन समाज के सम्मुख पृथ्वीसेन की महिमा बढ़ा रही थी। पृथ्वीसेन उस महिमा को अनायास स्वीकार करता जा रहा था। पिता की अभिसंधि और आयोजन से एक और युद्ध की घोषणा कर महासेनापति का पद और निर्बाध निरंकुश शासन का अधिकार समेटने के षड्यंत्र में उसके विचार उलझे हुए थे। वो अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा में था। 6 वर्ष 4 मास और 6 दिवस के व्यवधान के पश्चात रुधिर में सागर के समाज और उसके परिजन में पर्याप्त परिवर्तन देखा। तीर्थकाल तक मगध के उष्ण जलवायु में रहने से उनका वर्ण तनिष्क ताम्र हो गया था। पिता का देवलोकवास हो जाने से पिता के पद का गंभीर उनकी मुद्रा और व्यवहार में आ गया था। वे मितभाषी हो गए थे। उनकी दृष्टि पैनी और स्थिर हो गई। अभिधर्म के राहु से मुक्त पुनः स्थापित वर्ण आश्रम धर्म की शक्ति उन्होंने मगध में देखी थी। शक्ति प्राप्त करने के लिए किस रुद्र मार्ग की साधना आवश्यक है यह भी उन्होंने जाना था। उन्होंने भस्मीभूत महाविहारों के अवशेष देखे थे। सेनापति पुष्यमित्र के नेतृत्व में राजस्व शक्ति से तेजस्वी हुए वर्णाश्रम धर्म को देखा था। यज्ञ की उसी अग्निशिखा को हृदय में धारण किए यज्ञ में उसे पुनः स्थापित कर वर्णाश्रम के उद्धार का व्रत ग्रहण कर हुए लौटे थे। उनके मन में तीव्र ज्वाला धधक रही थी। रुद्रधीर ने देखा अपने पराभव से परास्त हुआ अभिजात समाज गणराज्य की व्यवस्था के विषय में विरक्त होकर अपने प्रसादों की सीमाओं में सीमित रहकर भोगों में आत्मविस्मृत हो रहा था। और देखा गण परिषद के संवाहक का आसन पाकर श्रेष्ठी प्रेस पक्षाधात रोग से पीड़ित सप्राण सब मात्र गणपति के नाम से शासन चलाकर अपनी कुटिल नीति से द्विजकुल और अभिजात वर्ग को अधिकारच्युत करता जा रहा था। उन्होंने कुल वर्ग का उद्बोधन किया। संघर्ष से विरक्त होकर अब व्यक्तिगत आत्मरक्षा में संतोष खोजना आत्महत्या है। भोग में आत्मविस्मित होकर मनुष्य भोग का अधिकार खो बैठता है। भोग का अधिकार संघर्ष में सफलता से प्राप्त होता है। गणमत और जनमत के सिद्धांत निर्भरी मुंडियों द्वारा द्विज वर्ग के अधिकारों को प्रदलित करने का प्रपंच मात्र है। द्विज देवता का अंश है, शक्ति उसका गुण है, उसका धर्म है, शासन उसका अधिकार है। जब अग्नि अपने गुण और धर्म से हीन हो जाती है, कृमि भी उस पर पांव रखकर गर्व करते हैं। इस प्रकार शासन और शक्ति से च्युत द्विज भी हीन धर्म हो जाता है। राजा और प्रजा का धर्म एक नहीं। जो शूद्र द्विज से समानता की स्पर्धा करता हुआ पातक है और द्विज के लिए भी पाप का कारण है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम शूद्र शंभू को दंड देकर यह मर्यादा जम्बूद्वीप में स्थापित की थी। दंड नीति ही धर्म का आधार है। रुद्रधीर ने सामंत कर्तवीर सामंत सर्वार्थ और महापंडित विष्णु शर्मा के प्रसादों में अनेक दिन गुप्त मंत्रण कर मद्र के मलेच्छों और शूद्रों के प्रभुत्व का अंत करने की आयोजना पर विचार किया। उसका उपाय था शत्रु का अचेत अवस्था में विध्वंस। उन्होंने कहा, जगती हुई चींटी की शक्ति सोते हुए हाथी से अधिक होती है। मुंडियों के प्रबल्य से मद्र के जनसमाज से अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति का ह्रास देखकर निरुत्साही द्विज वर्ग केवल अपने यज्ञ भाग से संतुष्ट होकर बैठ गए थे। मद्र की सेना पक्षाघात रोग से निष्प्रिय हो गए। गणपति के प्रतिनिधि बने घनश्याम वाहक श्रेष्ठी प्रेस्त तथा सेनापति यवन सामंत उक्रिस और पृथुसेन के अधिकार में भी अभिजात वंश और द्विज सामंत ऐसी सेना के प्रति उदासीन थे। अपने भाग के सैनिकों के पोषण के लिए गण से प्राप्त अग्रहार गणों की आय वह सैनिकों की नियुक्ति और पालन में व्यय न करके अपने भोग विलास में व्यय कर रहे थे। श्रेष्ठी प्रेस्त और उनके सवर्गीय तथ्य जानकर भी मौन थे। आचार्य रुद्रधीर ने इस रहस्य में श्रेष्ठी प्रेस्त की कुटिल नीति और द्विज सामंत की दूरदर्शिता को ही देखा। आचार्य ने द्विज सामंतगण को भोग का बाह्य आडंबर बनाए रखकर अपने आग्रहार ग्रामों के गुप्त रूप से नवीन सैन्य संसाधन करने की मंत्रणा दी। स्नेह वह सैन्य दल साधारण नागरिकों के बस वेश धारण कर सागर नगर में प्रवेश करने लगे। कुलों की समानता के अहंकार को दूर करने के लिए उन्होंने पैडव कुल के वंशधर सामंत सर्वार्थ को मद्र का गणपति घोषित करने का निश्चय किया। आचार्य रुद्रधीर ने अपने गुप्तचरों से जाना गण संवाहक ने समाचार पाया है कि गण के पश्चिम सीमा पर कट प्रदेश की सेना आक्रमण के प्रयोजन से एकत्र हो रही है। आचार्य ने संवाद पर गुण विचार किया। अपने मंत्र कार्यों का आह्वान कर उन्होंने चेतावनी दी, अब विलंब के लिए अवसर नहीं। निश्चय ही प्रस्त निकट भविष्य में रोगग्रस्त गणपति के शरीरांत की कल्पना कर रहा है। शत्रु के आक्रमण की आशंका का आवरण लेकर वह अपने सैनिकों को नगर में लाना चाहता है। आशंकित जन समाज का रक्षक बनकर उसकी सहानुभूति अपने प्रति आकर्षित करने के लिए यह प्रेस और पृथ्वीसेन का प्रतिपंच है। प्रवास से लौटते आचार्य रुद्रधीर को अपने प्रसाद में आया देखकर देवी मल्लिका ने आसन से उठकर उनकी अभ्यर्थना की। आचार्य को अपने आसन के समीप उपधान प्रदान कर देवी ने विशेष आदर से आर्घ्य तंबूल और पान पत्र उपस्थित किए। उदार विधि से अकाल में ताल आचार्य का शरीरांत हो जाने पर संवेदना प्रकट की और आचार्य के दीर्घ प्रवास के संबंध में उत्सुकता और कौतूहल प्रकट किया। आचार्य रुद्रधीर को कला से विशेष अनुराग न था, उनमें उनकी विशेष गति भी न थी, परंतु अपने प्रवास के व्यवधान में देवी मल्लिका के समाज पर छा जाने वाली विरूपता उन्होंने भी अनुभव की। देवी मल्लिका स्वयं भी क्लांत और निरुत्साह दिखाई दी। आयु 60 वर्ष के समीप पहुंच जाने के चिन्ह सहसा उनके मुख और शरीर पर प्रकट हो आए थे। समाज में न रसिकों का ही वह समारोह था और न कला का ही वह रूप। देवी मल्लिका की अनेक शिष्याओं अपनी शिक्षा समाप्त कर विदा ले चुकी थी। जो उपस्थित थी वह कला के मर्म और शक्ति से हीन थी। संगीत का अभ्यास हो रहा था। मल्लिका ने आचार्य से संगीत का रस लेने की प्रार्थना बिड़ गायक माहौल शिष्याओं और श्रोताओं के सम्मुख स्वर का आवड़ो कर रहे थे। आचार्य की उपस्थिति से उत्साहित होकर गायक ने अपना मुख उनकी दिशा में ही कर लिया। आलाप में आत्म था। वृद्ध माहुल की ग्रीवा ऊंची शाखा से पत्र तोड़ने के लिए उठी। ऊंट की ग्रीवा के समान खींची हुई थी। तनाव से ग्रीवा और कनपटियों पर नाड़ियां उठाई थी। माथे पर श्वेत कण उभर आए। श्वास अवरोध से नेत्र आरक्त और सजल हो रहे थे। श्वास साधे हुए यथासंभव विलंब तक करते रहे। श्वास लेना अनिवार्य हो जाने पर वक्षस्थल में पुनः प्राणवायु भर उनका श्वेत समस्त्रु स्वच्छादित दंतहीन तंबू चर्चित मुख पुनः में खुल गया। अवस्था के कारण कंठ कांपने से माहुल का सड़ज स्वर भी कर्णकटु हो रहा था। अपने प्रयत्न की पूर्णता के संतोष से अपने सजल नेत्र दीप्त हो रहे थे। उनकी कांपती हुई उंगलियां अधर में हिल हिल कर उनके आलाप की सूक्ष्मता की ओर संकेत कर रही थी। मल्लिका और दूसरे दो एक मर्मज्ञ सिर हिला हिला कर उस स्वर लहरी में बहे चले जा रहे थे, परंतु आचार्य के लिए उस संगीत का समाप्त न होना यंत न हो रहा था। गणाचार्य लगभग दो घड़ी आलापते रहे। रुद्रधीर केवल एक शब्द समझ पाए, मदिर। क्या मदिर? नयन ओष्ठ अथवा स्पर्श से वे कुछ जान ना पाए। इतने विलंब तक प्रतीक्षा करने के पश्चात जिज्ञासा का उत्साह भी न रहा। आलाप समाप्त होने पर मल्लिका और दूसरे मर्मज्ञ ने सुंदर सुंदर अत्यंत सुंदर कर संतोष प्रकट किया। गायनाचार्य की कातर दृष्टि अपनी ओर लगी देखकर रुद्रधीर ने भी मत प्रकट किया, उत्तम, अत्यंत उत्तम। उस प्रशंसा के परिणाम स्वरूप विद्रु माहुल ने अपने जिन बक्ष पिंजरे में पुनः श्वास भरकर मुख खोल दिया। आचार्य ने किने तान भग न कर अपने कर्मन में अपने विशिष्ट आचार्य के प्रति पश्चाताप किया। हुए मल्लिका के समाज में बीच वैभव का स्मरण करने लगे। जब संभ्रांत रसिक नर नारी चतुष साल में बैठने के लिए पर्याप्त स्थान पाकर चारों ओर के हलिंदों में गिरे रहते थे, जब कालकंठी सम्मुखियों के दल में मल्लिका पूर्णिमा की रात्रि में तारा खदित प्रकाश आकाश में चंद्र की भांति जान पड़ती थी, जब उनके चतुष साल में नृत्यरत युवतियों के नुपुर की झंकार से सागल गुंज उठता था, जब कला कमर खोजना न पड़ता था, उसका रस स्वयं ही मन को व्याप्त कर देता था। इस समय आचार्य को मल्लिका का चतुष साल पाले और पतझर के विश्व विरूप हो गए वसंतोद्यान के समान जान पड़ रहा था। गायक माहुल ख्यात नाम नट उदुम्बर विद्या नर्तक की प्रथा और वादक पदम पात्र के रूप में कला का ज्ञान ही शेष रह गया, परंतु उसकी शोभा और शक्ति विहीन हो चुकी थी। समाज के पश्चात आचार्य आलिंद ने मल्लिका के समय बैठे वार्तालाप के प्रसंग में उन्होंने सहानुभूति के स्वर में प्रश्न किया, देवी सागर की शोभा और गौरव तुम्हारे समाज की यह क्या अवस्था हो गई? निराश स्वर में मल्लिका ने उत्तर दिया, आर्य समय का चक्र है अथवा देव की इच्छा, क्या कहूँ सागल का अथवा मेरा दुर्भाग्य, स्वयं मेरी आयु शरीर के सामर्थ्य की एक सीमा है। आर्य उत्तराधिकारी द्वारा परंपरा की रक्षा करने योग्य किसी शिष्य का नाम मिलना अतः जन समाज का निरादर आर्य ज्ञानी है। कला सूक्ष्म भावना द्वारा ही पोषित होती है, वह हीन जन के अधिकार की वस्तु नहीं, अनेक कारणों का संयोग है। आर्य दोष किसे भाग्य ही समझिए, देवी किसी से मधुलिका के संबंध में सुना समाचार स्मरण कर आचार्य के आग्रह से प्रश्न किया। धर्मस्थ की परपोत्री के उपरांत मधुलिका पर ही देवी की विशेष कृपा थी, ऐसी ख्याति थी कि वह देवी की यश कीर्ति को सुरक्षित रख सकेगी। आचार्य की धारणा ठीक है, दीर्घ निश्वास लेकर मल्लिका ने उत्तर दिया, माधुलिका कला की इस पीठ को जीवित रख सकती थी। कालांतर में कोई अधिक योग्य सरस्वती की वर पुत्री उसे उज्जवल कर पाती, परंतु आर्य मधुलिका में वह संयम और निग्रह नहीं जो कला की साधना का आधार है। संभवतः उसका दोष भी न हो, देवी आगे कुछ कह ना पाई। मल्लिकास्वर में अवसाद और हास्य का अभाव पा आचार्य ने देवी के अधिक समीप होकर प्रश्न किया, मधुलिका से ऐसा क्या अविचार हुआ देवी? अविचार हुआ देवी, प्रसंग ने मन में जग उठी। प्रिय स्मृति से खिन्न होकर देवी ने उत्तर दिया, ज्ञानी आर्य जानते हैं कला साधना है, जो साधना के लिए अपनी प्रवृत्तियों का दमन नहीं कर सकता वह पूर्णता नहीं पा सकता। ऐसे अप्राप्य शिष्य के हाथ में कला का अपमान और हास्य होता है। 14 मास पूर्व सेनापति आर्य पृथुसेन का अनुराग मधुलिका के प्रति उच्छृंखल हो उठा था। मधुलिका के अभाव में उन्हें तृप्ति न थी। मधुलिका उनकी संगति में शिक्षा अभ्यास से अनुपस्थित रहने लगी। उन्मत्त अवस्था में उस समय विषम स्वरों का भेद भूल जाती। मल्लिका का स्वर उत्तेजित हो गया। मैंने मधुलिका की प्रताड़ना की। मधुलिका आसक्ति और साधना का संयोग असंभव है। मैंने उसे प्रसाद न छोड़ने की आज्ञा दी। आर्य पृथुसेन ने मेरी ही प्रसाद में आकर मेरी शिष्या पर मेरे अधिकार को ललकारा। मधुलिका के सम्मुख मेरा तिरस्कार उन्होंने कहा, यदि मधुलिका के सम्मुख देवी मल्लिका के वैभव के उत्तराधिकार का प्रश्न है तो मैं उससे दुना धन मधुलिका को दूंगा। यदि मधुलिका को राजनर्तकी के पद का लोभ है तो मैं अपनी इच्छा से उसे मद्र की जनपद कल्याणी का पद देने की क्षमता रखता हूँ। मद्र में ऐसा कौन है जो सेनापति पृथुसेन की इच्छा का विरोध करेगा? यह दम्भ देवी के प्रति संवेदना से उत्तेजित हुआ आर्य बोल उठे। मल्लिका का भी स्वर ऊंचा हो गया। आचार्य, कला का इस भीषण अपमान और क्या हो सकता था? मैंने प्रतिहारियों को आज्ञा दी मधुलिका को प्रसाद से बहिष्कृत कर दें। आर्य अपने हाथों यत्न से पोषण कर उसे कला के कठिन रहस्यों से अवगत करा कर मधुलिका को यूँ दूर कर देने का मुझे उतना ही दुख है जितना अपने गर्भ की कन्या रुचिरा के वियोग का। परंतु आर्य कला का अनादर मल्लिका नहीं सह सकती। उनके नेत्र सजल और आरक्त हो गए। देवी अनाधिकारी की स्पर्धा सदा औचित्य की सीमा का उल्लंघन करती है। देवी यह अवस्था और अनादर समुद्र में जीवन के लिए जीवन के किस क्षेत्र में नहीं, किस का सम्मान आज निरापद है, कौन धर्म आज अक्षुण्ण है। देवी हीन कुल बिरसल यज्ञबलि के असुर कामधेनु को भी केवल उसके चर्म की तृष्णा से देखता है। क्या न्याय और प्रजा का कल्याण उसके हाथों सुरक्षित रह सकता है? मन का आवेग वश कर मल्लिका बोली, आचार्य, कला व्यवस्थित की वस्तु है, परंतु परिस्थितियों के कारण सागर में व्यवस्थित चित्त कोई रह ही नहीं गया। कला के पोषक कुलवर्ग समाज से प्रताड़ित और संतरस्त होकर विरक्त कर आश्रय ले बैठे। आर्य आज सागर सिंगाणों का राज्य है और सिंह अप्रतिभ होकर कंदरा में छिप रहे हैं। समृद्धि और अधिकार के प्रयोग से अभिज्ञ अकुलीन जन नए पाए सम्मान के उन्माद से विलास में लिप्त हैं। सूक्ष्म कला में उनकी गति कहाँ और जन समाज विलास के उस विकृत रूप से विरक्त होकर भोग को केवल अनुचार का मूल कारण विरक्ति में शक्ति लाभ करने की आशा से मुंडी धर्म के निर्माण की इस मिथ्या शांति में आश्रय ढूंढता है। उससे केवल बुद्ध की शरण का निमंत्रण ही संतुलना देता है। ऐसी आशंका और अवस्था में आर्य कला के लिए स्थान कहाँ पर वंचना है सब देवी? मल्लिका की बात में अपने विचारों का समर्थन पाकर प्रकट में गंभीर रहा। आचार्य समर्थन किया, इससे मुक्त हुए बिना समाज का कल्याण नहीं। देवी इहलोक और परलोक दोनों का साक्ष्य है। मद्र में यज्ञ का हविष सुकड़ खा रहा है, इसी पाप के क्रुद्ध देवता का हुआ सब अभिशाप है। देवी मद्र को उससे मुक्त करना आवश्यक है। परंतु आचार्य, यदि देवता की ऐसी इच्छा है, देव का ऐसा ही विधान है, तो मनुष्य क्या कर सकता है? निराशा से मल्लिका ने उत्तर दिया। आचार्य ने देखा कि सरस्वती के इस मंदिर में जब निष्ठा से देवी का आराधन होता था वहाँ देवी का वरदान था। कामदेव की मुस्कान से यहाँ सदा वसंत था। अब स्वयं देवी की हीन विरक्ति से सब और अभिशाप की रुक्षता है। आचार्य अधीरता से उग्र स्वर में बोले, अग्निमुख ब्राह्मण पृथ्वी पर देवता का अंश है। देवी व देवता की प्रचंड शक्ति का प्रतिनिधि है। क्षत्रिय उस शक्ति की भुजा है। मनुष्य के जीवन को सिर नीचा कर हाथों के आश्रय चलाने से क्षत्रिय उसकी भुजा है। मनुष्य के शरीर को सिर नीचा कर हाथों के आश्रय चलाने से स्थान भ्रष्ट जंग और पद की विरूप और अव्यवस्थित होते हैं। सिर और भुजा भी दलित होते हैं। ब्राह्मण को शासन के सिंहासन पर स्थिर करना प्रजा का धर्म है। देवी धर्म स्थापना में तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। सेवक का आज्ञा के लिए प्रस्तुत है आर्य। विनय से मल्लिका बोली। प्रकाश से दीप्त मल्लिका के नेत्रों में उग्र दृष्टि डालकर आचार्य ने प्रश्न किया, यह देवी की प्रतिज्ञा है? मल्लिका आशंकित हुई आर्य अपना अभिप्राय कहे, धर्म की स्थापना और रक्षा के लिए देवी की सहायता और सहयोग की आवश्यकता है। आचार्य का स्वर दृढ़ था। कुछ क्षण चिंतामग्न रह मल्लिका ने प्रार्थना की, आचार्य आज्ञा करें। आचार्य ने सतर्क भाव से जिज्ञासा की, देवी यह क्या यह आलिंद मंत्रणा के लिए निरापद स्थान है? देवी आपदा काल में भीतियों के भी कान हो आते हैं, कोई उनकी मंत्रणा सुन नहीं सकता। इस विषय में आश्वासन पाकर आचार्य बहुत समय तक रहस्य के स्वर में देवी मल्लिका से मंत्रणा करते रहे। गंभीर स्वर में देवी मल्लिका ने स्वर दिया, देव कार्य में आर्य की जो आज्ञा हो। समाप्त। सागल।